ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा,
कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे राम हरे राम,
हरे राम हरे राम,
राम राम हरे हरे,
राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा। वो कन्फर्मेशन क्यों नहीं दिया था? क्योंकि माया का प्रभाव कितना रहेगा उसका अंदाज नहीं रहने, इसलिए मैंने कन्फर्मेशन नहीं दिया। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर मौसम चल रहा है, किस चीज का? होली और गौर पूर्णिमा दोनों का। तो ये जो दर्शन है आपका यहाँ का बहुत इंस्पायरिंग है। तो ये होली जो है वो वसंत पंचमी को शुरू होती है, तो इस साल 10 फरवरी को शुरू हुई है और वो 45 दिन चलती है, 45 डेज। वसंत पंचमी से लेकर फाल्गुन पूर्णिमा तक, और उसके बाद 5 दिन पंचमी तक, फाल्गुन कृष्ण पक्ष पंचमी तक चलती है। थोड़ा सा आपको सीक्वेंस बताना जरूरी है। वसंत पंचमी के दिन सबसे पहले दोपहर की जो उत्थापन आरती होती है ना, ठाकुर जी विश्राम करते हैं, फिर दोपहर में उठते हैं, किस जगह पर 4:30 को, किस जगह 5 बजे, 5:30 बजे। तो उस दिन सबसे पहले रंग भगवान को चढ़ाते हैं और फिर वो होली शुरू होती है, और फिर रोज शाम को होली होती है, और वो रूटीन होली होती है। और जब फाल्गुन महीने की अष्टमी आती है तो उस दिन रंगीली होली के निमंत्रण देने के लिए नंदगांव से एक ब्राह्मण आते हैं बरसाने में, उसका नाम है पांडे। तो इस लीला को कहते हैं पांडे लीला। तो वो पीली पोखर पे आते हैं निमंत्रण लेके, और फिर पीली पोखर पे वहां पर सखियां रहती हैं, राधारानी नहीं रहती, विशाखा रहती है। तो ठाकुर जी विशाखा को नजरों से इशारा करते हैं, कहाँ है? कहते हैं महल में है। फिर वो नजरों से इशारा करते हैं, ले आओ उनको। तो उस समय राधारानी रूठी रहती है किसी कारण, मान में रहती है। तो फिर ललिता जी उनको मनाती रहती है कि क्यों रूठी हो। विशाखा आती है भाग भाग के, कहती है वो आ गए हैं भगोली खेलने के, अभी तक रूठे रहने का समय नहीं है। तो वो मान नहीं मानती उसको, तो कहते अगर भरोसा नहीं तो जाके के देख लो चलो कैसे। तो कृष्ण वहां पर, आप जाएंगे ना पीली पोखर आज भी, तो सीधे वहां पर मनु महल का दर्शन है वहां से। तो झरोगे में आते थे यहां से, वो देखते हैं तो उनको यकीन होता है कि वो आए हैं सच सच के। थोड़ा मैंने आपको गलत बताया, मिक्स किया था मैंने, दोबारा बताता हूँ। तो जब पांडे आते हैं तो वो कैसा है ना, अपने इस्कॉन में कैसा ना खिचड़ी होता है ना, खिचड़ी वैसे मैंने खिचड़ी कर दिया। लेकिन पांडे जब आते हैं तो पांडे अकेले होते हैं निमंत्रण देके, तो सब सखियां उनको घेर लेती है, और अकेले पांडे को देखकर पूरा रंग से धो देती है उसको, चारों तरफ से रंग देती है उसके ऊपर, और वो बहुत परेशान हो जाते हैं। वो बेचारे अकेले क्या करेंगे, कितने भी स्ट्रांग रहेंगे तो 50 औरतें आएंगे तो क्या कर सकते हैं। बाद में श्रीजी आती है और वो देखते हैं कि अकेले पांडे को कितने एम्बरेस कर रहे हैं सब लोग मिलकर, तो वो छुड़ाते हैं उनसे और फिर क्षमा मांगती है उनसे कि मेरे सखियों ने आपको तंग कर दिया, चलो आप घर चलते हैं। घर ले जाती है उनको, वहाँ पर सुगंधित और उष्ण जल का स्नान के लिए इंतजाम करती है, उनकी जो रंगे हुए वस्त्र है वो निकाल कर उनको राज वस्त्र देती है, सिंहासन पर बिठाती है, उनके पैर प्रक्षालन हो जाता है, आरती हो जाती है उनकी, उनको स्वादिष्ट भोजन आरोगा जाता है, उसके बाद दक्षिणा दी जाती है, उतने में कीर्ति मैया आती है और देखते हैं अरे नंद गांव से पांडे आया है, तो वो बड़े प्रेम से अपने हाथ में लेकर लड्डू उसके मुंह में भर देती है, समझ गया ना, वो इंग्लिश में नहीं बता सकते इसको, आप कोशिश करो, आप कोशिश करो, आप इंग्लिश में नहीं बता सकते, मुंह में लड्डू भर देना, ऐसे ही भर देते लड्डू प्रेम से बहुत आनंद से। तो उस होली को कहते हैं लट्ठा लड्डू मार होली, क्योंकि वो जो प्रेम से कृति भैया ने बड़े ही प्रेम से पांडे को लड्डू खिलाया था, वो उत्सव आज नंद बरसाने के मंदिर के अंदर से लड्डू फेंक कर मनाया जाता है। आज भी पांडे आते हैं उस दिन, लेकिन अकेले नहीं आते, बहुत सारे लोगों को लेके आते हैं, और जब श्रीजी मंदिर में न्योता देने के लिए प्रवेश करते हैं तो श्रीजी मंदिर के गर्भगृह से लड्डू फेंके जाते हैं उनके, तो वो पकड़ते हैं, बाहर के लोग भी पकड़ते हैं उसको, और वो लड्डू प्रसाद प्राप्त करना बहुत ही मूल्यवान माना गया है, वेरी वेरी ऑस्पिशियस एंड प्रेशियस, तो उसको कहते हैं लड्डू मार होली। फिर पांडे को राधा रानी पालकी में बिठाकर सम्मान पूर्वक नंदगांव द्वारा भेजती। तो अगले दिन, अब अगला दिन कौन सा हो गया, अष्टमी हो गई ना, लड्डू मार होली हो गई, अभी नवमी, नवमी को कहते हैं रंगीली होली, वो बरसाने की मेन होली है, जिसको हम होली कहते हैं वो एक्चुअली रंगीली होली है। उस दिन नंदगांव से जुलूस निकलता है और ठाकुर जी और सारे ग्वाल बाल जो है बड़े सज सज के निकलते हैं, एक तो फेटा पहनते हैं जोरदार, फिर रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, उसके ऊपर अलंकार पहनते हैं, उसके ऊपर बहुत सारा श्रृंगार करते हैं, उसके ऊपर पिचकारियाँ, उसके ऊपर सूखे रंग अलग अलग प्रकार के, वो सब बोलते हैं ना आरबी कैसा होता है पूरा ऐसा पैक वैसे पूरा भर के डंडा लेकर और उढ़ाल लेकर निकलते हैं। वो ढाल बलराम जी का प्रतीक है, बलराम जी भी आ रहे हैं साथ में, लेकिन बलराम जी सबके लिए ढाल के रूप में भी साथ देते हैं उनके। और उस जुलूस में कौन कौन आ रहे हैं, उस जुलूस में ब्रह्मा जी, शिव जी, सुखदेव जी, योग माया, चतुष कुमार, नारद मुनि, इंद्र, सब देवता उसमें भेष बदल कर प्रवेश करते हैं, लेकिन चार मुख वाले ब्रह्मा चार मुख वाले ही आते हैं, पंचमुखी शिव पंचमुख में आते हैं, और ब्रजवासी बालक उनके बहुत मजाक उड़ाते हैं। ब्रह्मा जी को बोलते हैं इनकी अगर शादी हो जाए तो कौन से मुख से बीवी बात करेगी और ये कौन से मुख से जवाब देंगे ऐसे बहुत मजाक उड़ाते हैं उनका, बहुत मजाक उड़ाते हैं। और ब्रह्मा जी भी ऐसा ही प्रतीत नहीं करना चाहते कि मैं ब्रह्मा हूँ, उनको ऐसे ही इनकॉग्निटो यानी कि पहचानना नहीं चाहते किसी को, मतलब ऐसे ही अपने आनंद लेने के लिए आते हैं। ब्रह्माणी उनसे झगड़ा करती है कि आप तो अकेले गए हमको लेके नहीं गए, ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शन में आप अकेले भाग जाते हो तो क्या करे, ऐसा भाव आ जाता है कि मैं अपने आप में होश रखता नहीं हूँ चले जाता हूँ, ऐसे वर्णन आया है। इंद्र है ना, इंद्र सबको रिझाने के लिए ऐसे अपने गाल ऐसे 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 खोखा कर अद्भुत ध्वनि निकालते हैं और बाल बाल बड़ा उनका आनंद लेते हैं, अलग प्रकार का वाद्य बजाते हैं मुख से। योग माया सुखदेव जी दो नग्न अवस्था में उसको गोद में लेकर नाचने लगती है। इस प्रकार से बहुत सुंदर जुलूस जो है ना, अद्वितीय जुलूस है ये, अद्भुत, तो कोई मिस नहीं करना चाहता। ऐसे ये देवताओं से भरा हुआ, ग्वाल बालों से भरा हुआ जुलूस नंदगांव से निकलता है और नाचते गाते आनंद मनाते हुए बरसाने जब पहुंचता है तो पीली पोखर में ये जुलूस रुक जाता है। इस समय जब भी ठाकुर जी पहुंचते हैं तो वो ललिता विशाखा को देखते हैं, विशाखा करते हैं जो मैंने पहले गलत बताया था कि कहाँ है, तो वो कहते हैं ऊपर है, तो फिर वो इशारे से भेजते जाओ ऊपर उनको ले आओ, तो फिर ऊपर जाते हैं और लेके आते हैं। लेके आने के पहले वो रूठी हुई है तो उसको मना रहे हैं, विशाखा देवी मना रही है अभी तो कम से कम मान जाओ, क्योंकि वो आ गए हैं विशाल दस्तक, हाँ नायक बनकर आ गए हैं एज अ हीरो यस कम। तो फिर राधा रानी झरोखे से बाहर आती है और दर्शन करती है श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण उनको देखते ही जमीन से पिचकारी मारते हैं, लेकिन वो पिचकारी जो है ना वो उन तक नहीं पहुंचती है, लेकिन उनके हृदय का भाव जो है उन तक पहुंच जाते हैं। तो फिर वो झट से श्रृंगार करती है सखियों के साथ उनके सहायता से, और फिर राधा रानी सब गोपियां सज धज कर होली खेलने के लिए पीली पोखर पे आती है। तो पीली पोखर जो है ना ये होली का शुभारंभ है, वहां पर होली शुभारंभ होती है। तो वो तय करते हैं कि हम लोग सूखी होली खेलेंगे और बाद में गीली होली खेलेंगे, दोनों साथ में नहीं खेलते ऐसा वो तय करते हैं, और सूखी होली खेलने का उत्सव शुरू होता है। जब ये सूखी होली शुरू होती है तो कुछ ही समय में कृष्ण भगवान का पक्ष हारने लगता है, सखा लोग हारने लगते हैं, और जैसे हारने लगते हैं तो कृष्ण शरारत करते हैं, तुरंत पिचकारी निकाल के पिचकारी मारने लगते हैं। समझ में आना आपको, सूखी होली का नियम तोड़ के चीटिंग करते हैं और पिचकारी निकालते हैं। और पिचकारी में इतने, मैं तो आपको बहुत धीरे धीरे वर्णन कर रहा हूँ, ये सब इतना स्विफ्टली होता है कि समझ में नहीं आता कब क्या हो रहा है। जब कब निकालते हैं कब पिचकारी मारते हैं तो राधा रानी को तुरंत समझ में आता है कि ये पिचकारी मार रहे हैं, तुरंत हाथ अपने चेहरे पे, क्योंकि पिचकारी कहाँ मार जाते हैं, चेहरे के ऊपर, तो ऐसे हाथ करते चेहरे को। लेकिन वो पिचकारी इतनी तेज से आती है कि वो हाथ को लगकर ऐसे उड़कर गाल पे आ जाते हैं। समझ में आना, बहुत सारा बजा लेती है लेकिन वो स्पीड इतना होता है कि वो उसमें से भी लगकर गालों पर परावर्तित हो जाती है। सुवर्ण वर्ण की गाल है उनकी, और लाल रंग का कलर जो है वो कुछ बिंदु उन पर गिर जाते हैं, तो वो इतनी सुंदर दिखती है राधा रानी कि ये तुरंत पिचकारी नीचे करके उनको देखते रह जाते हैं, तो सौंदर्य को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो पिचकारी निकालते हैं और मारते हैं, तुरंत होली का गेम बंद हो जाता है, इन्होंने चीटिंग किया है, जरूर स्टॉप्स। और कुछ समझ में आने के पहले, ये भाव विभोर हो रहे हैं समझ में आने के पहले, उनको चार पांच सखियां आकर पकड़ लेती है, उनके हाथ मरोड़ लेती है पीछे से, उनको अरेस्ट कर लेती है। बहुत गालियां बकती सब सब सखियां मिलकर, बहुत गालियां बकती, तुम ऐसे ही हो, तुम वैसे ही हो, तुम कोई नियम पालन नहीं करते हो, तुम हमेशा चीटिंग करते हो, जो हारने लगते हो तो शरारत करते हो, तो फिर क्या किया जाए, उनको दंड दिया जाए। तो फिर ललिता देवी जो है ना, हमारी मुकदमा उनके पास पहुंचता है हमेशा, क्या किया जाए, उसको दंड दिया जाए। तो ललिता देवी तय करती है को तीन दंड दिया जाए, एक उसका मुंह काजल से काला किया जाए, दूसरा वो दुपट्टा पहन कर आए ना, सम्मान, सम्मान का प्रतीक है वो छीना जाए, और तीसरा उनके पीठ पर गाली लिखी जाए, होली की स्पेशल गाली, और उनको भगाया जाए। इस तरह से उनको ये तय करते हैं, अभी कौन करेगा इसको, तो राधा रानी खुद उनका मुंह काला करेगी। तो राधा रानी की पांचों उंगलियां वो काजल में डुबा देती हैं पूरे, और उनको लेकर आती हैं, और उनको भी लेकर आते हैं हाथ मरोड़ के अरेस्ट करके मुंह के सामने, और जैसे ही वो लगाने जाते हैं तो ये मुंह फेर लेते, तो फिर दो और सखियां आती है, और उनका ऐसा दोनों तरफ से मुंह पकड़ती है और सामने प्रस्तुत करती है, तो दोनों हाथ से उनका मुंह काला करते हैं, कुछ सखियां दुपट्टा छीन लेती है, कुछ सखियां रंग से पीछे गाली लिख देती हैं। वैसा ये होली का शुभारंभ है। फिर तो होली की बहुत सारी लीलाएं, ऐसे ठाकुर जी अकेले खड़े हैं और ऐसे भाव विभोर होकर देख रहे हैं इधर उधर, तो सब गोपियां सोच रही हैं, अरे अकेले खड़े हैं क्यों ना इन पर रंग डाला जाए, इस तरह से पीछे से आके उनको घेर लेते हैं। फिर ये कभी कभी आते हैं और पीछे से राधा रानी के ऊपर रंग डालकर कुंज में छुप जाते हैं, कभी ये झूला खेलते हैं और झूले में होली खेलते हैं, झूला कैसे ऐसे भी हिलता है, सामने भी हिलता है और गोल भी हिलता है, और उसमें अचानक सब सखियां रंग निकाल कर होली खेलते हैं। और आनंद नाम चंपू में लास्ट अध्याय में आप ये पढ़ सकते हैं कि कहा गया है कि देवता लोग आकाश में होली खेलने देखने के लिए आते हैं तो उनको कुछ नजर नहीं आता है, क्यों, इतना रंग ऐसा बादलों की तरह उड़ता है कि अंदर कुंज में निकुंज में क्या चल रहा है किसी को समझ में नहीं आता है, इतना रंग विविध प्रकार का। और वृंदा देवी उसमें क्या लिखा है कि वृक्षों को, वेलियों को, फूलों को, फलों को, सबको इंस्ट्रक्शन देती है कि आपकी सेवा क्या है इसके अंदर, सबको तैयार करके ये होली और झूला एक साथ में उत्सव मनाते हैं। तो उसी दिन जिस दिन ये होली शुरू होती है, फिर सब सखियां सजधज के आती है लट्ठा लेकर, और बाल बाल भी आते हैं वहां से, सब उनको रंग से घेर देते हैं, और फिर लट्ठा मार शुरू होता है। तो बलराम जी का प्रतीक जो है ना ढाल, उसके ऊपर लट्ठा का प्रारंभ है, और वो आज के तारीख में केवल 5 से 5:30 तक होता है शाम। गवर्नमेंट उस दिन वो रंगीली होली जहां पर ये उत्सव होता है उस दिन कई ट्रक भरकर धूल वहां डालते हैं, और उसमें से सखियां आती हैं और नंदगांव से ग्वालबाल आते हैं, पहले श्री जी का दर्शन करते हैं, फिर वहां से रंगीली गली में आते हैं, तो उनको मधुर मधुर गालियां दे दे कर रंग डालते डालते वो वहां पहुंचते हैं, और रंगीली होली में फिर घंटावान होनी शुरू होती है। इसके पहले 15 दिन तक जो नवीन युवतियां हैं, कुमारी युवती या नई बहू है जवान, उनको 15-20 दिन तक कुछ काम नहीं देते हैं, केवल मेवा और घी खिलाते हैं, मालिश कराते हैं, हष्ट पुष्ट कराते हैं, उनके लट्ठे को भी तेल से और घी से सोख करते हैं रोज, और उसको भी मशीन से, उसका बड़ा प्रोसीजर होता है, हमने बॉम्बे में कभी देखा नहीं, लेकिन लट्ठा का जो बिजनेस होता है ना, उनके पास कई मशीन होती है, वो टेढ़े लड्डू को, टेढ़े लट्ठे को सीधे कर देते हैं, उसको तेल से मालिश करके स्मूथ बना देते हैं, उसको वार्निश भी करते हैं, बहुत सारा चीज़ करते हैं, लट्ठे को बहुत प्रक्रिया होती है, तो वो सारे लट्ठे भी वो लोग तैयार करते हैं और अपने घर के जवान युवतियों को बहुत प्रोत्साहन देके होली का नया जोड़ा खरीदते हैं। ब्रज में ऐसी प्रथा है कि पुराना कपड़ा पहन के होली निकले जाते हैं और घर में जितनी भी औरतें हैं वो सब लोग होली खेलने जाते हैं, कम से कम जाकर वहाँ रंगीली होली के रज को प्रणाम करके आते हैं, ये उनका भाव है। तो और जवान औरतें जाती ही है, लेकिन बुजुर्ग बुजुर्ग औरतें भी नया जोड़ा पहन के जाती और लट से प्रहार करती है, और कभी किसी को लग गया समझो लट गलती से, तो वो लोग उसी रज को लेकर उसको लगा देते हैं और वो ठीक हो जाता है, ऐसे भी चलता है। और जब 5 से 5:30 तक लट्ठमार होली समाप्त होती है और सब चले जाते हैं, तो इतने ट्रक भर के डाले हुए जो रज है उसमें से एक कण भी आपको नहीं मिलेगा, सब उसको ले जाते हैं महाप्रसाद के रूप में, ऊपर से रोड पे गड्ढे खोदते हैं और वो खोद खोद के रज लेके जाते हैं, ऐसा भाव है उनका। तो उनके लिए होली के मजाकिया खेल नहीं है, उनके लिए होली एक अति उच्च भाव का प्रकट भाव का प्रदर्शन करने का मौका है। तो राधा और कृष्ण और सखियां और सखा जो हैं वो एक दूसरे का प्रेम जो है वो होली के माध्यम से प्रकट करते हैं, बहुत ही सुंदर। बुजुर्गों को चरणों में और हाथों में होली लगाते हैं, समवयस्क लोगों को गले लगा कर गालों में होली लगाते हैं, और बुजुर्गों बुजुर्ग जो है वो अपने बालकों को आशीर्वाद के रूप में सजर लगाते हैं, बहुत ही क्या कहते हैं उसको, इत्मीनान से सम्मान पूर्वक प्रेम से ये उत्सव मनाया जाता है, उसमें कोई वहाँ पर वैसे होता है ना वो गलत व्यवहार वैसे नहीं होता है मुंबई जैसा। तो इस प्रकार की होली, इसमें बरसाना की औरतें गोपियां नंदगांव के हुरियारों को लट्ठ मारती है ना, हुरियार मतलब जो आते हैं वहां से होली खेलने के लिए, उसको हुरियार कहते हैं। अगले दिन यानी कि यस्टरडे, ये अष्टमी कभी थी 14 तारीख को, नवमी कभी थी 15 मार्च को, कल 16 मार्च था, तो कल के दिन नंदगांव की होली। तो बरसाने के पुरुष सज धज कर हुरियारा बनकर नंदगांव जाते हैं, नंदगांव की औरतें सज धज कर उनको लट्ठा मारती है, तो उसको नंदगांव का नंदगांव की होली कहते हैं। फिर आज जो है वो रंग भरनी होली है, आज वृंदावन में राधा रमन जी, बांकी बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, सब ठाकुर जी आज होली मनाते हैं, सब बहुत आनंद आता है वृंदावन में, ऐसा वातावरण होता है कि कैसे बताएं आपको, आनंद अगर पूरे शहर में छा गया हो, प्योर हैप्पीनेस, तो कैसा अनुभव आएगा आपको, आपको जाकर वहीं एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और प्रेम से लोग होली, कोई कोई बुरा नहीं मानता है, कोई रिक्शा से कलर फेंकते हैं, कोई रिक्शा के ऊपर कलर फेंकते हैं, कोई रोड पे लड़के बच्चे छोटे लड़कियां सब सज धज कराते हैं रोड पे और सबको रंग लगाते हैं, और मंदिरों में बहुत विशेष रूप से होली खेली जाती है, बहुत प्रेम से मंदिर के अंदर से गोस्वामी लोग मंदिर के बाहर दर्शन में आए उनके ऊपर रंग फेंकते हैं, बहुत सुंदर वातावरण, वेरी लविंग एंड वेरी सैटिस्फाइंग एंड फुलफिलिंग एटमॉस्फेयर। तो उसके बाद में फिर कौन सा हो गया, एकादशी होगी ना, फिर द्वादशी के बाद में बठेन जावट की होली होती है, वही बठेन के पुरुष जावट की स्त्रियां जावट में, जावट के पुरुष बठेन की स्त्रियां बठेन में, दो दिन होते हैं। उसके बाद में 20 तारीख आएगी ना, तो 20 तारीख को फालेन की होली होती है, फालेन नाम का एक गाँव है, वहां पर हर साल एक पंडा तो बहुत शुद्ध जीवन जीता है, तपस्वी जीवन, वो पांडा दिन भर जप करके व्रत करके कई दिनों का व्रत करते हैं, और होली के दिन भी दिन भर निर्जला रखकर व्रत करते हैं, और रात को वो अपने शरीर को तेल लगाकर केवल कोपिन पहनकर होलिका के अग्नि की ज्वाला से अंदर प्रवेश करता है और वहां से बाहर निकलता है, उसको कुछ नहीं होता है, ये देखने के लिए बहुत लाखों लोग पहुंचते हैं वहां पर, और पेपर में न्यूज चैनल पे सब जगह पर ये लाइव दिखाते हैं, तो व्यक्ति जो है वो कोपिन पहनकर पूरे अग्नि से होली का जलाते पूरे बहुत लंबा उसके अंदर से वो बाहर निकलता है। उसके बाद में फिर अगले दिन जो होली होती है वो बलदेव में होती है, दाऊ जी, उसको होरंगा कहते हैं, होरंगा में बहुत प्रसिद्ध उत्सव है, वहाँ बलदेव जी होली कहते हैं। बलदेव एक बताने को भूल गया मैं, जब बटेन और जावट की होली होती है उसको छड़ीमार होली कहते हैं, क्योंकि बलराम जी ने भी होली खेली है, दाऊ जी महाराज ने, तो वो उनका हल के प्रतीक में वो छड़ी लेकर आते हैं और छड़ी से उनको पीटते हैं, उसको छड़ीमार होली कहते हैं। इस तरह से पंचमी तक होली चलती है, इमेजिन 45 डेज। बसंत पंचमी से लेकर फाल्गुन पूर्णिमा, उसके बाद में 5 दिन, तो 40 + 5 = 45 डेज। ऐसा ये सुंदर होली का उत्सव है। मतलब हम लोग बम्बई में रहते हैं या शहर में रहते हैं ना, हमको 1% भी उसका आइडिया नहीं आ सकता कि वहाँ पर क्या हो रहा है, कैसा उत्सव मनाया जाता है और कितना प्रेम होता है उसके अंदर। और अधिकतर कुछ अभी कलयुग के प्रभाव से कुछ जवान लड़के लड़कियाँ होते हैं, वो गंदगी का काम करते हैं, लेकिन 99.99% जो वातावरण है वो बहुत शुद्ध प्रेम का वातावरण है और वो कई दिन तक चलता है। ये वातावरण बहुत जरूरी है। और होलिका दहन के बाद दूसरे दिन धूलि वंदन भी होता है, उसके अंदर ब्रज की जो धूल है उसको वंदन किया जाता है और वो धूल उठाकर सब लोगों को लगाते हैं, जिसका बहुत ही विकृत रूप हम मुंबई में और शहरों में देखते हैं, गटर का कीचड़ निकाल के कारों में मारते हैं वगैरह वगैरह, क्योंकि लोगों को इसके पीछे का भाव पता नहीं है। ये हर जो उत्सव है उसका एक बाह्य अंग है, उसमें रंग है, पिचकारी है, गुलाल है वगैरह वगैरह, ड्रेस है, ढाल है, ये सब एक्सटर्नल ऑर्नामेंट्स हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है होली का वो भाव है। और ब्रज के आचार्य हमारे गुरु महाराज इन सब लोगों ने यही बताया है कि होली का भाव क्या है। होली का भाव ये है कि जब वो सज धज कर आते हैं नंदगांव से, साथ में बड़े बड़े बक्से भरकर, फगुआ कहते हैं उसको, फगुआ यानी गिफ्ट्स, फागुन महीने का गिफ्ट, उसमें अलंकार होते हैं, वस्त्र होते हैं, भोजन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत कीमती कीमती वस्तु होती है, वो बॉक्स बॉक्स भर के ठाकुर जी वहाँ से लेके आते हैं साथ में। और उसका प्रयोजन क्या होता है, जो होली में हारेगा उनको जीतने वालों को देना पड़ता है। तो अगर समझो ठाकुर जी को जीतने का यकीन है कि हम जीत जाएंगे तो वो क्यों बक्सा लेके जाएंगे, है ना, तो कोई विनर टीम है तो वो थोड़ी ऐसा हारने के पहुंच जाते हैं, वो तो जीतने के लिए जाते हैं। लेकिन ठाकुर जी का भाव ये है कि वो होली खेलने में जाते हैं तो हारने के लिए ही जाते हैं। लट्ठा मारते हैं ना उनको, तो सब लोग लट्ठा झेलते हैं, लट्ठा झेलते हैं तो उनको दो प्रकार का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो लट्ठा जो पड़ रहा है वो इसके ऊपर ही पड़े, ऐसे 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 करके अपने सर पर ना पड़े, और दूसरा उनकी नजर जो है ना वो हमेशा जो लट्ठा मार रही है उस गोपी के चरणों में रहती है कॉन्स्टेंटली। यू हैव टू सी दिस एक्चुअली, क्योंकि वो गोपियों का आशीर्वाद लेने के लिए वहां पर आते, और जो गोपियां मार मार के फिर बंद करती है तो तुरंत वो वहां पर दंडवत प्रणाम करते हैं, गोपी का चरण स्पर्श करते हैं और तुरंत गोपी को फगुआ निकाल के देते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान भी फगुआ लेकर क्यों आते हैं, क्योंकि वो वहां पर गोपियों के सामने हारना चाहते हैं, कैसे भी करके वो हार जाते हैं और फिर सभी गोपियों को अलंकार देते हैं, वस्त्र देते हैं, मिठाई देते हैं। आज भी वो भाव से वो जो गोपी है उसका पति उसके पीछे पीछे घूमते रहता है, जैसे उसको पैसे आते हैं पति अपनी जेब में सब ऊपर से देखा हुआ है ऐसे सब लोग ऐसे रोड पे इतनी भीड़ होती है, सब लोग ऐसे बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे, छत पे, गैलरी में, इधर उधर सब जगन्नाथपुरी कैसे होता रहते हैं यात्रा में, वैसे बुकिंग कर लेते हैं पूरा और ऊपर से देखते हैं उसको, बहुत अच्छा दर्शन होता है ऊपर, पूरा रास्ता जो है वो रंग से भर जाता है, सब गोपी गोपियां सब बाल बाल रंग से भर जाते हैं, बहुत ही सुंदर वातावरण होता है। इसलिए मुझे हमेशा लगता है ऐसे कि ऐसे वातावरण में किसी को डिप्रेशन कैसे आएगा, आ सकता है क्या, यानी सो हैप्पी एंजॉइंग लव, दिल से जो प्रेम का अनुभव कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, लड्डू फेंक रहे हैं, नाच कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति में जिसको डिप्रेशन है वो खुश हो जाएगा। इसलिए भारतवर्ष में अभी तो शहरीकरण हो गया ना पूरा, अर्बनाइजेशन, इसकी वजह से डिप्रेशन एंट्री मार रहे हैं। लेकिन भारत देश उत्सव प्रिय देश है, उसमें एक के बाद एक बार उत्सव लगे रहते हैं, तो ये खत्म हो गया दूसरा, दूसरा खत्म हो तीसरा, तो बीच में डिप्रेशन को टाइम किधर है। दिस इज सीक्रेट बिहाइंड इंडियन कल्चर, उत्सव प्रियता, सबको प्रेम देना, सबसे प्रेम लेना, आनंद लेना, आनंद देना, और हमेशा खुश रहना, और भी केंद्र स्थान में भगवान को रखकर। ऐसे उत्सव खुद के लिए नहीं होते, सब उत्सव भगवान को संतुष्ट करने के लिए होते हैं। तो ये सारा जो होली का उत्सव है उसका रहस्य है राधा रानी का प्रेम और कृष्ण की अपनी उनके लिए हार मानना, उनको ऊंचा दिखाना, खुद को नीचा दिखाना, यही होली का सार है। और हमको भी अगर होली खेलना है, हम खेलना चाहते हैं, तो इसी भाव से खेलना चाहिए। जिसको रंग लगा रहे हैं उसको आनंद प्राप्त हो, वो मेरा स्वामी बने, मैं उनका सेवक बनूं, मैं उनका दास बनूं, इसी भाव से आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक, प्रेम पूर्वक ये होली का खेल खेलना चाहिए। उसमें कहीं भी वो व्यभिचार टाइप का भाव, वल्गैरिटी, वो सब नहीं आना चाहिए। तो हम एक तरह से उत्सव का ही अपमान कर रहे हैं, एक तरह से वो उत्सव का जो उद्देश्य है उसका अपमान कर रहे हैं, जो उत्सव मनाया जा रहा है वहां पर उसका अपमान कर रहे हैं। एक विकृत तरीके से लोगों को होली का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे को के बचपन से क्या पता था कि होली मतलब लड़कों लड़कियों को पीछे से आकर पूरा ऑयल पेंट लगा देने, परेशान करने का, उनको उनके अच्छे अच्छे बाल जो है बिगाड़ देने का, उनके चेहरे को बिगाड़ देने का, उनको फिर वो फोड़े आ जाए, उसके ऊपर एलर्जी आ जाए, तो गंदे से गंदे केमिकल डाल के उसको बनाने का, और फिर बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियां जो है उसके ऊपर कलर मारने का ताकि उसकी कांच फूट जाए, ये हो जाए। मीनिंग ये सारा जो वातावरण है ये द्वेष से भरा हुआ है, और उस उत्सव के वातावरण का लाभ लेकर अपना द्वेष निकालना, अपना काम भावना को उद्दीपित करना, इस तरह से और अधिक माया में फंस जाना, इस तरह से होली का उत्सव यहाँ मनाया जाता है। इसलिए भारत के जितने उत्सव हैं वो उत्सव जहाँ से उगम हुए हैं वहां पर जाकर उत्सव के भाव को समझने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो कुछ ही साल में ये उत्सव सब खत्म हो जाएंगे और सब जगह विकृति छा जाएगी। और हमारा देश का जो नींव है वो इसी पर बना हुआ है, राधा कृष्ण के प्रेम और उनकी लीलाएं, और उसी पर सारे उत्सव आधारित हैं। और वो सबको समझना हमारा कर्तव्य है। अगर हम आज भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, भगवान के भक्त होने का प्रयास कर रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, तो हमारा सबका ये कर्तव्य है कि संस्कृति को हम बचाए रखें। हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? इट इज नॉट यू और ही, इट इज ओनली मी। ऐसे हमको सोचना चाहिए, अगर मैं नहीं इस उत्सव के भाव को समझूंगा और मैं नहीं उसको समझाऊंगा तो और कौन समझाएगा? तो मेरा ही उत्तरदायित्व है। अगर सब लोग ऐसा सोचेंगे तो ये उत्सव की जो शुद्धि और पवित्रता है वो बनी रहेगी, और हमारे आगे वाली पीढ़ियों को भी वो पवित्रता वैसे ही प्राप्त होगी जैसे हमको थोड़ी बहुत प्राप्त हो रही है। क्योंकि कलयुग का प्रभाव कैसा है? कलयुग का प्रभाव इतना तेज है कि बहुत जल्दी से, तेजी से सारे पवित्रता को नष्ट किया जा रहा है। हर चीज के पीछे, हर भाव के पीछे जो पवित्रता है वो बहुत तेजी से नष्ट की जा रही है, नष्ट हो रही है। जैसे पानी गिर रहा है ऊपर से पहाड़ से, तो उसको रोकना कितना मुश्किल होता है, कितना स्पीड से गिरता है वो, उस प्रकार के संस्कृति का नाश हो रहा है। तो हम लोगों को उसको समझना चाहिए, थोड़ा समय निकाल के प्रयास करना चाहिए उसको भाव समझने का, उसकी लीलाओं को समझने का, और लोगों को बताने का, उनको लोगों को प्रेरणा देने का प्रयास करना चाहिए, ताकि ये जो 40 दिन की 45 दिन की होली होती है हम लोग एक दिन मनाते हैं, तो कम से कम एक दिन में उस भाव से मनाएं और एक एग्जाम्पल लोगों के सामने खड़ा करें कि ऐसे होली मनाई जाती है। इसमें केवल हृदय को संतुष्टि और प्रेम का अनुभव होता है, कोई आतंक का अनुभव नहीं होता है, कोई दुख का अनुभव नहीं होता है, कोई पीड़ा द्वेष का अनुभव नहीं होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एनीवेज, तो ये जो उत्सव है ये सब का और एक मूल है राधा रानी का प्रेम, और वो इतना गहरा और इतना महान है कि कृष्ण भी उसके सामने बिल्कुल भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं, मेरी क्या स्थिति है। वो होंगे वैकुंठाधिपति गोलोकेश्वर, पर ब्रह्म भगवान होंगे वो, लेकिन जैसे राधा रानी के सामने आते हैं ना तो सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसे कहा जाता है कि वो सांवले रंग के हैं लेकिन राधा रानी के साथ में जब खड़े होते हैं तो राधा रानी के सुनहरे आभा से पूरे छा जाते हैं, उनका सांवला रंग छुप सा जाता है, ऑलमोस्ट गेट्स हिडन व्हेन ही इज विद राधा रानी। राधा रानी के साथ जब रहते हैं तो वो खुद भी तेज को प्राप्त करते हैं, और दूर जाते हैं तो तन से और मन से उनके विरह की वजह से निस्तेज नजर आते हैं। राधा रानी अपने प्रेम भरे तेज से उनके ऐश्वर्य के प्रभाव को नष्ट कर देती है। समझ में आपको है? उनके अंदर जितनी शक्तियां हैं, परास्त शक्ति विविधा ही वस्तु हुए थी, इतनी प्रकार की शक्तियां हैं जिससे वो जग को नियंत्रित करते हैं, निर्माण करते हैं, चलाते हैं, अद्भुत चमत्कार करके दिखाते हैं। वो सारे ऐश्वर्य का प्रभाव जो है राधा रानी के तेज से धुंधला हो जाता है। तो ऐसे ही वो ये जो होली का उत्सव हुआ, उस समय तो वो पीली पकौर लीला हो चुकी थी। पीली पकौर लीला जब हुई तब वो होली का उत्सव उसके बाद में हुआ है। तो पीली पोखर भी लीला जब हुई ना, वो हाथ धोए राधा रानी ने, बड़ी लंबी लंबी कहानी में समय बहुत नहीं है, फिर भी उसके बाद में जब वो पीली पोखर प्रिया कुंड जब पीले पोखर बन गया, तो कृष्ण भगवान को ऐसे कहा गया कि उनको नंदगांव में रहा नहीं जाता है। वो दिन भर भी अगर मिलेंगे राधा रानी को, फिर भी वो जब चली जाती है तो उसके पीछे कुछ बहाना करके बरसाने आ जाते हैं। कभी उसको छद्मलीला कहते हैं। छद्मलीला मतलब कभी वो फूल बेचने वाली, कभी कंगन पहनाने वाली, कभी चूड़ी बेचने वाली, कभी माला बेचने वाली, कभी ब्रह्मचारी, कभी सन्यासी, कभी बैरागी, कभी कुछ कभी कुछ, ऐसे अलग अलग भेद बनकर दर्शन करने आते हैं। तो ऐसे ही वो आ गए और जब पीले पोखर में आए, देखा नहीं तो पानी तो स्वच्छ था, कल तक अभी पीला तो कर गया, तो उसमें पानी में उतर गए वो भाव विभोर होकर, और पूरे गोल्डन हो गए। फिर भी पूछ रहे हैं कि पीली वस्तु क्या है, सब लोग जमा हो गए, कौन पुकार रहा है, और देख रहे हैं तो दो पंजे हाथ के और मोर पंख जो है पीली पोखर के पानी में घूम रहे हैं, मतलब पूरे डूब गए ये, इनका मोर पंख और दो हाथ पंजे जो है ना वो ऐसे पूरे ऐसे तीन चीजें घूम रही है। लोग भी देख रहे हैं क्या घूम रही है, अद्भुत बात क्या है। फिर वो बाहर आते हैं तो पूरे स्वर्ण कांति में बन जाके बन के आते हैं। कहा गया है कि फिर भी प्रश्न पूछ रहे हो क्या है ये लो सब्सटेंस क्या है, पीली वस्तु क्या है, तो वो राधा रानी का प्रेम है जिसको ग्रहण करते ही वो भाव विभोर हो जाते हैं। लेकिन शिवराम महाराज जी उसके आगे कथा लिखते हैं कि जब वो बाहर आते हैं तो सखाओं को मिलते, सखा भी बहुत परेशान हो जाते, क्या हो गया कन्हैया को हमारे, क्यों, क्योंकि सखाओं को पूछ रहे हैं श्याम सुंदर जी कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। आपको समझ आया श्याम सुंदर कहाँ है, मुझे उसको मिलना है। फिर तो आप ही श्याम सुंदर हो, नहीं श्याम सुंदर कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। फिर ग्वाल बाल तो तुम पागल हो जाते, समझ में नहीं आता कि क्या होगा कहना, खुद श्याम सुंदर है, खुद कन्हैया और खुद को ही मिलने की बात कर रहा है, तड़प रहा है खुद के लिए, मतलब राधा रानी का भाव अंदर प्रवेश कर चुका है। राधा रानी का भाव प्रवेश कर दे क्या हो गया, कृष्ण का कृष्ण होना समाप्त हो जाता है, कृष्ण जो कृष्ण है वही मिट जाते हैं और राधा होकर ही बोलने लगते हैं। इट्स लाइक वी से इन आवर साइकेट्रिक लैंग्वेज हॉन्टेड, पूरा प्रभावित हो जाते हैं उसके अस्तित्व से और व्यक्तिमत्व से। कहते हैं उस दिन ग्वाल बाल इतने दुखी हो गए कि क्या हुआ कृष्ण को, क्यों ऐसे बात कर रहे हो, कौन सा रोग लगा ऐसा, उनका पिशाच चढ़ गया उसके ऊपर कि वो भी पागलों की तरह बात कर रहे हैं। और चल छोड़ो, उसके बाद वो ग्वाल बाल परेशान है, कुछ नहीं कर पा रहे, तो ये पेड़ों से जाकर बोल रहे हैं श्याम सुंदर को देखा है आपने, बेलियों से पूछ रहे हैं, फलों से पूछ रहे हैं, फूलों से पूछ रहे हैं, पंछियों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से, मोर से पूछ रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं कि मेरे कन्हैया कहाँ है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। काफी घंटों के बाद समझाने के बाद में वो फिर पूर्ववत हो जाते हैं और वो थक जाते हैं, वो घर जाके अकेले में सो जाते हैं। यू नो यू गेट एग्जॉस्टेड व्हेन यू गेट रिलीव्ड फ्रॉम समथिंग लाइक दिस। तो वो कुछ समय का जो अनुभव उनको हुआ पीली पोखर के अंदर, उससे वो अपने आप को ही भूल गए। बरसाना महाराज जी बताते हैं कि उसी समय उन्होंने सबसे पहली बार इंडिकेशन दिया कि मैं आ रहा हूं इस भाव में। फिर वो रासलीला रचाई उन्होंने 7 साल की उम्र में, फिर गोपियां थोड़ा गर्व किया उन्होंने, फिर छोड़ के चले गए वो, है ना, तो छोड़ के चले गए और इमली तला के नीचे बैठ गए। इमली तला पेड़ है ना जमुना किनारे में, वो वृंदावन में है। तो गोपियां भाव विभोर हो गई, अरे हमने तो गलती किया, समझा हमारे साथ में ही है, लेकिन वो सबके साथ थे, क्यों हमने गर्व किया, इतना अच्छा सानिध्य था वो बैठे। तो फिर वो ढूंढे ढूंढे गोपी गीत गाते गाते बेलियों को पूछ रहे हैं कहीं कृष्ण को देखा है। यहाँ पर वो इमली तला के नीचे बैठे हैं और दो चीज करते हैं, अपने मुख से राधा राधा जपते हैं और अपने मन में राधा रानी के दो चरणों के ऊपर ध्यान करते हैं और आंखें बंद करके इतने भावविभोर हो जाते हैं, इतने मग्न हो जाते हैं कि उनके ऊपर गौर वर्ण चढ़ जाता है और उनको पता नहीं है, ये नो एनीथिंग, वो पूरे तो अंदर अंदर की यात्रा कर रहे हैं पूरी तरह से, मुख से हरि नाम, मुख से राधा नाम और मन में राधा रानी के चरणों पर चिंतन। राधा सुधा निधि ग्रंथ में ये श्लोक का वर्णन दिया है कि कैसे वो बैठे हुए हैं और कैसे मग्न होकर अपने आप को खो चुके हैं और बाहर से पूरा राधा रानी का रंग चढ़ा है उनके ऊपर, राधामय हो गए वो पूरे और आंखें बंद है पूरी उनकी, उनको पता ही नहीं वो कहाँ बैठे और क्या हो रहे हैं। उतने में राधा रानी सखियों के लेकर वहां पहुंचती है और देखती है अरे इसको ढूंढ रहे हैं हम लोग, लगता तो ऐसे ही दिखता है वो, लेकिन मोरपंख भी है, पीताम्बर भी है, मुरली भी है, सब है, लेकिन गौर वर्ण कहाँ से आ गया। तो बहुत चर्चा करते हैं ऐसे कौन है ये, कभी देखा नहीं सकती, कृष्ण जैसे ही है लेकिन रंग तो सांवला नहीं है, बहुत देर तक चर्चा करते हैं। फिर आप भी वो तय करते हैं कि राधा रानी अभी आप जाकर उनको छू और उनको ही आके पूछो और रहस्य भेद करो, तो वो जाकर उनको स्पर्श करती है तो वो बाह्य चेतना में आते हैं। जैसे ही बाह्य चेतना में आते हैं तो उनका गौर वर्ण झड़ जाता है और वापस सांवला रंग प्रकट हो जाता है और वहां के खोलते हैं और राधा रानी को कहते हैं कि क्यों मुझे आपने वापस लाया। राधा रानी पूछती है आप पहले बताइए क्या रहस्य है, तो वो कहते हैं कि आपके विरह में मुख से आपका नाम लेते हुए आपके दो सुंदर चरण कमलों पर पूर्ण ध्यान करते हुए मेरी ऐसी अवस्था हुई कि मैंने बहुत ही अद्भुत आनंद का अनुभव किया, जो मैं सब कुछ जानने वाला होकर भी वो आनंद का जो अनुभव किया है उसको मैं खुद नहीं जानता था वो क्या चीज है, इसलिए मैं अगले अवतार में आपका ही भाव लेकर प्रकट हो जाऊंगा और आपका भाव के वजह से आपको क्या अनुभव होता है उसका मैं अनुभव करूंगा। अभी आप देखिए जस्ट थिंक एनालाइज, कुछ ही समय का अनुभव था वो, कुछ दो घड़ी होगी शायद, जितनी घड़ी उन्होंने विरह किया यहाँ पर, जितनी उन्होंने विरह का अनुभव किया, उतनी छोटी से समय के अनुसार कालावधि में जो उन्होंने अनुभव किया वो अनुभव से वो इतने प्रभावित हो गए, इतने इंस्पायर्ड हो गए, उन्होंने तय किया कि मैं 48 साल का एक पूरा अवतार लूंगा इसके लिए, ऐसा सोचा नहीं कि मैं एक दिन आऊंगा, नरसिंह बाबू ने एक दिन के लिए आए थे ना, है कि नहीं, आए खंबा थोड़ा अपना काम किया चले गए, नरसिंह भगवान ने अपना प्रहलाद को प्रेम दिया, दिन भर थे वहां पर, शाम को चले गए, ऐसा भी हो सकता है ना, एक दिन का भी अवतार हो सकता है, समझ गए। और आप भगवान भी ऐसे आए थे, आए और हिरण्याक्ष का वध किया, थोड़ा लीला किया चले गए, उनका कोई जन्म बाल लीला रेंग रहे हैं दूध पी रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर वो एक घंटे का एक घड़ी कितने समय की होती है, 20 मिनट की होती है ना, तो तीन घड़ी तो एक घंटा हो गया, छह घड़ी दो घंटे हो गए, समझो दो घंटे का अनुभव अगर चाहते तो एक दिन भी कर सकते हैं, पूरा 24 घंटा अनुभव कर सकते हैं विस्तार रूप में। लेकिन अब भगवान की प्रेरणा को देखिए कि वो दो घड़ी का जो आनंद का अनुभव था वो कृष्ण भगवान को इतनी प्रेरणा दी उन्होंने उस अनुभव ने, उन्होंने 48 साल तक पूरा अवतार खर्च किया उसको समझने के लिए और उसी का ही ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बोलो बोलो
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
एक कॉइन दीजिए। तो क्या कह रहा था मैं बताइए,
48 hours, 48 days।
Keep always coin with you. तो जो भी गौरांग महाप्रभु के लीला में आप देख रहे हो अभी, आप इसके आगे उसको दूसरे एंगल से देखो, ये सब क्यों हो रहा है, राम भगवान के अवतार में वो हवा के भी ज्यादा गति से बाण चला देते। शूर्पणखा ने जो वर्णन किया था ना रावण को जाके, वैसा वर्णन किया था कि कब तोड़ने से बाण निकालते, कब धनुष पे लगा दे, कब प्रत्यंचा खींचते, कब छोड़ दे, कब दूसरा बाण निकालते, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे एक पंखे की तरह चल रहा है वो पूरा एक्टिविटी। हम लोग बताने में भी हमें समय लग रहा है, उतना समय लग रहा नहीं राम को। और 45 मिनट्स के अंदर 14,000 राक्षसों को, खर, दूषण और त्रिशिर को साथ में 45 मिनट में उन्होंने नष्ट कर दिया। फिर कृष्ण भगवान के फिर सीता देवी ने कहा कितने क्रूर हो आप, ऐसे होलसेल में बात कर रहे हो। वो भी देख रहे हैं ना मौका। उन्होंने कहा ठीक है अगली बार आऊंगा ना तो मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा। तो ब्रिज में किसी को मुक्का मारा, किसी के मुंह में हाथ डाला, किसी को खुद से उठा के फेंक दिया, किसी के अंदर चले गए और एक्सपांड हो गए, ऐसे सब उन्होंने शस्त्र ने लिया। फिर भी राधा रानी कहती है कि बड़े क्रूर हो आप, कैसे मारते हो लोगों को। देखो राधा रानी कितनी करुणामयी है, सीता देवी कितनी करुणामयी है, दोनों वही है किशोरी जी, दोनों किशोरी कितनी करुणामयी है। उनको दुष्टों का वध भी उनको देखने को सहन नहीं होगा। तो उनके संग के वजह से कृष्ण को प्रेरणा मिल रही है करुणामय बनने की। ऐसे नहीं कि उनके अंदर करुणा नहीं है, लेकिन होता है ना कभी कोई एमएससी होता है, उसको अभी कोई पीएचडी होता है, उसके बाद में फिर डीएससी भी होता है, कोई उसके आगे होता है। तो ऐसे करुणा में भी बहुत स्तर हैं, तो ये सर्वोच्च स्तर है। रामानंद राय के जिला में भी आप पढ़ेंगे तो वर्णाश्रम की शुरुआत होती है उसकी, वो आगे आगे बढ़ते 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 कहाँ रुक जाता है सब, पूरा शोरी रुकता कहाँ है। हाँ राधा रानी के प्रेम में, गोपियों के बाद भी भगवान कहते हैं आगे कहो और वहां पर रुकते नहीं है। राधा रानी पर बहुत आगे बढ़ते हैं तो अंतिम समय पर राधा रानी का प्रेम जो है ना वो फिर वहां रुक जाता है सर, दैट इज द हाईएस्ट थिंग। तो ये करुणा का चरम सीमा है। तो करुणा के चरम सीमा जो व्यक्ति है उसके संग से परम करुणावान भगवान भी प्रेरित हो जाते हैं। और जो राक्षसों का संहार करने के लिए अनंत अवतार ले चुके हैं वो ऐसा अवतार लेने का तय करते हैं कि अभी इस अवतार में मैं किसी को नहीं मारूंगा। ये किसका प्रभाव है? ये राधा रानी की करुणा का प्रभाव, उनके संग का प्रभाव। तो केवल उनका रंग ही नहीं झड़ता है उनके संग में, उनका भाव भी बदल जाता है। संग अगर राधा कृष्ण का भी हो या हमारा किसी भक्त के साथ में हो, परिणाम तो होता ही है उसका। तो राधा रानी के संग का ये परिणाम है कि कृष्ण के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन आ रहा है। और वो सांगो पंगास्त्र पार्षदम, केवल पार्षदों को लेकर आ रहे हैं, हरिनाम को लेकर आ रहे हैं, गौलोक के प्रेम धन को एक कैप्सूल में डालकर लेके आ रहे हैं। और गौलोक में जो सर्वोच्च रास लीला का आनंद है तो यहाँ पर भी प्रकट करते हैं और प्राइवेट लिमिटेड के रूप में रखते हैं उसको कृष्ण के लीला में। वो जो अद्भुत दिव्य आनंद है वो एक महामंत्र के कैप्सूल में डालकर वो जन सामान्य को वितरित करने के लिए ये अवतार ले रहे हैं। जो धनुष चक्र गदा कौमुदकी ये सब लेकर आते हैं हमेशा, राक्षसों का संहार करते हैं, दुष्टों का नाश कर देते हैं, वही भगवान अभी वो हरिनाम अस्त्र लेकर आ रहे हैं। इसलिए वो जगाए बधाई को उन्होंने तत्क्षण प्रेम दिया। ये उनके अंदर जो राधा रानी छुपी हुई ना उनके अस्तित्व का प्रभाव है कि जिनको मारने के लिए चक्र भी निकाल के लेकर आए, लेकिन फिर भी किया क्या उन्होंने अल्टीमेटली। चाहते तो वो अपने प्रभाव से चक्र को अपने हाथ से निकाल सकते थे, लेकिन चक्र ने उनकी उंगली जलाई लेकिन वो निकले नहीं वहां से, क्योंकि करुणा का इतना प्रभाव है ना। जैसे अभी मैं बरसाने में था ना, इतनी ठंड थी ना कि जली हुई अगरबत्ती बुझ जाती थी, इसका भी मैंने अनुभव किया। क्योंकि वातावरण में इतना डैम्पनेस है ठंड का कि वो अगरबत्ती का जो नोक है ना ज्वाला वाला वो मिट जाता था, दिन में कई बार जलाने के बाद मिट जाता था। सिंकिंग की इसी प्रकार से करुणा का प्रभाव ऐश्वर्य के ऊपर होता है। ऐश्वर्य वो अगरबत्ती के चिंगारी की तरह है और वो जो करुणा जो है ना और प्रेम जो है ना वो ऐसे ठंडक की तरह है, वो उसको ऊपर उठने देता ही नहीं है। इसलिए वृंदावन धाम में ऐश्वर्य प्रकट ही नहीं होता है, माधुर्य माधुर्य ही छाया रहता सब जगह पर, ऊपर से करुणा राधा रानी की। तो ये जो जगाई मदाई को माफ करने का तरीका है, क्या किया भगवान ने आखिर, केवल गले लगाया उनको, गले लगाकर सारा पाप ग्रहण कर लिया, खुद निस्तेज काले रंग के हो गए, हरिनाम संकीर्तन किया, और वो निस्तेज था को निकालकर अवकाश में फेंक दिया, लेकिन इधर क्या हुआ नीचे? तत्क्षण वो पाप से मुक्त होकर उनके हृदय में प्रेम का जो बीज है वो बो दिया उन्होंने, तो अभी पाप से भरे हुए हैं और अगले क्षण में वो प्रेम से रो रहे हैं। इतना शीघ्र, अति शीघ्र परिवर्तन उन्होंने लोगों के अंदर दिखाया है, यू कैन इमेजिन। और ये सब राधा रानी के प्रेम का प्रभाव, उनके भाव का प्रभाव। कृष्ण वैसे जनरली किसी को, जनरली उनके साधारणता से वो किसी के वश में नहीं होते, बहुत अनन्य चिंतयन्तु माम सर्वधर्म परित्याज वगैरह वगैरह उनका रूल है। और वे सर्वधर्म परित्याज करने के बाद क्या कहते हैं? अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, हाँ, प्रेम प्रदान करने का बात नहीं करते हैं, कल पाप से मुक्त करने का, डोंट वरी पाप से मुक्त कर दूंगा, ऐसे बात करते हैं। प्रेम देने का बात तो वादा करते क्या वो? उनके अंदर ये परिवर्तन कैसे होता है? वो केवल राधा रानी की कृपा से। फिर वो किसी को अति भयंकर प्रापी होने के बाद भी तत्क्षण उनको रिहा कर देते हैं, उसी समय प्रेम से उनको विभोर कर देते हैं। ऐसा नहीं कि अभी पाप से मुक्त कर दिया फिर अधो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति तथा स्याद निष्ठा तथा रुचि आसक्ति, ये सब 9 स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ऑन द स्पॉट इधर पाप इधर प्रेम तत्क्षण प्रकट हो जाता है, दिस इज चमत्कार। ये केवल वैवस्वत मनु के 71 दिव्य युगों के 28वें युग में जब कलयुग आता है तब ये चमत्कार, इतना दुर्लभ है ये। और हम सब लोग उस कलयुग के अंदर ही जन्म लिए हुए हैं जिस कलयुग में ये सब चमत्कार हो रहा है। इस कलयुग के चमत्कार को प्राप्त करने के लिए देवता लोग भी आकाश से आते हैं, लाइन लगाकर खड़े कि इस कलयुग में जा चैतन्य महाप्रभु आए हुए हैं, वैष्णव के झरम जन्म ले लें, 50-60-70 साल के अंदर अपना काम पूरा करें जो लाखों साल में स्वर्ग लोक में पूरा नहीं होता है। जस्ट थिंक अबाउट इट, हम लोग का कितना भाग्य है। जो देवता लाखों लोगों का ऐश्वर्य संपन्न जीवन अनुभव करने का योग्यता प्राप्त कर चुके हैं वो भी लाइन लगाकर खड़े हैं कि कलयुग में 50-60-70 वाले लोगों के बीच में जन्म लें, ताकि ये जो कृपा, अनन्य कृपा, दुर्लभ कृपा वितरित हो रही है उसको लाभार्थी बने हों। और छोटे समय में, लाखों समय के, लाखों सालों के बदले में कुछ छोटे समय में वो परिपूर्णता प्राप्त करें जो अन्य किसी युग में प्राप्त नहीं होती है, सत्ययुग में नहीं होती है, त्रेता में नहीं है, द्वापर में नहीं है। ये जो परिपूर्णता है, ये जो अल्टीमेट गेन है लाइफ का, वो बाकी समय में प्राप्त नहीं होती। इसलिए महाप्रभु की लीला जो है अनंत लीला है। गौर लीला जो है ना वो प्रेम से भी अधिक करुणा से भरी हुई है। तो इसलिए हमारा परम भाग्य है कि हम लोग उसी संप्रदाय में जुड़े हुए हैं, उसी हरिनाम को प्राप्त कर चुके हैं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु वितरित कर रहे हैं। वही दिव्य अनुभव जिन्होंने भक्तों को दिया वो उसी संप्रदाय में हम जुड़े हुए हैं। तो डोंट टेक इट लाइटली, हमारे सारे पाप कर्मों को स्वीकार करके ये महामंत्र हमको दिया जा रहा है, वही प्रेम की खान आपके वो लुटाई जा रही है, इतना हमको उसको ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। क्योंकि उसमें और करना कुछ नहीं है, सब तपस्या, सब आपका जो भी कुछ है, व्रत है, सब कुछ वही है, 16 माला जप, उसके ऊपर कोई व्रत नहीं है। मैं कल शाम को सोच रहा था ये 16 माला करना अभी इतना कठिन हो गया है, अगर कोई व्यक्ति 30 साल 16 माला कर रहा है तो वही सबसे बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ा अचीवमेंट वही है। He is not giving up, he is still chanting 16 rounds every day. लेकिन वो सुबह कैसे किया जाए, ध्यान पूर्वक कैसे किया जाए, मन लगाकर कैसे किया जाए, कैसे ना सोते हुए किया जाए, कैसे विचार ना करते हुए किया जाए, कैसे बार बार भगवान को पुकार पुकार कर किया जाए, ये बड़ा चैलेंज है। क्योंकि जब केवल जब नहीं है, जब एक पुकार है हमारी, संबोधन, सप्तम, वो संस्कृत में कहते सप्तम विधि है वो संबोधन, लास्ट वेर वी आर कॉलिंग, स्टैंडिंग वी आर कॉलिंग हरे कृष्णा, कॉलिंग द लॉर्ड, तो वो कैसे पुकार पुकार पर किया, पुकार पुकार कर किया जाए। लेकिन सुनता कभी आदमी है जब उसको पुकारा जाता है ना, यहाँ बैठ कर ऐसे कुछ बोलेंगे तो उसको सुनने वाला है, पुकारेंगे तो सुनेंगे, पुकार ही नहीं तो सुनेंगे कैसे, तो कैसे उसको पुकार कर किया जाए। वही चीज़ है वो, वही चीज़ सबको दी गई है, किसी को डिफरेंट नहीं दी गई है, वही मात्रा में वही पोटेंसी के साथ सभी लोगों को वही महामंत्र दिया गया है। तो हमको ये प्रयास करना चाहिए कि वही सही सेम परिणाम सबको प्राप्त क्यों ना हो, क्यों नहीं होना चाहिए। सो वी हैव टू वर्क हार्ड ऑन दैट। अगर चैतन्य महाप्रभु का ये निर्णय जो है, निर्णय कि मैं आऊंगा और आपके भाव को लेकर मैं खुद अनुभव करूंगा, लोगों को बांटूंगा। ये जो निर्णय भगवान ने लिया है ये हमारे हित में है कि हमारे खिलाफ है, बताइए? सबके हित में है ना, ये द ग्रेटेस्ट मर्जी है हमारी। अगर कोई ऐसा निर्णय लेता है कि सब सब जनता को 1 करोड़ रुपए दिया जाए तो वी आर लाइक इट्स इन फेवर फॉर अस ना। उस निर्णय को अगर आपको रिस्पॉन्स देना है इन ग्रेटिट्यूड, अगर आपको कृतज्ञता के साथ उसको रिस्पॉन्स देना है तो एक ही उसका रिस्पॉन्स है, वो क्या है बताइए? ध्यान पूर्वक उसका जप करना, पुकारते हुए जप करना। यही हम लोग का था, हमारे अंदर कोई क्षमता नहीं है उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए, कुछ गिफ्ट लेने के लिए हमारे अंदर क्षमता नहीं है। लेकिन जो वो निर्णय लेकर चाहते हैं कि ये जीव सब मेरे पास लौट कर आए प्रेम से, वो जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए क्या करना है? उसी महामंत्र को ध्यान पूर्वक जप करना। तब उन्होंने इतना सारा कष्ट किया, 48 ईयर्स अवतार खर्च किया, पूरा शस्त्र अस्त्र छोड़ के आए, गोदाम में रखे, हाँ चलाए नहीं किसी के ऊपर, सबको प्रेम ही दिया, सबको कोई पात्रे अपात्रे ना देखिला स्थाने अस्थाने ना देखिला स्थाने अस्थान, कोई स्थान नहीं देखा, कोई व्यक्ति की योग्यता नहीं देखी, कोई ब्राह्मण है शूद्र है, कोई यवन है म्लेच्छ है, कोई जानवर है, किसी को नहीं देखा उन्होंने। इतना सारा उन्होंने रूल तोड़कर, खुद के रूल तोड़कर आए वो, कुछ हमारा भी होना चाहिए, रिस्पॉन्स होना चाहिए ना। हाउ मच ही हैज डन एंड व्हाट आर वी डूइंग? हम लोग जब करते बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज को रिप्लाई कर रहे हैं, कुछ आया हुआ फिल्म देख रहे हैं, कोई टीवी देख रहा है, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई बीवी से बात कर रहा है और मोबाइल हाथ में माला जप कर रहा है, बीच में एक मणि भी नीचे कर लेता है बीच में एक्सपर्ट पूरे हो जाते हैं बीच में, बन रहता है कि वो समझे ही नहीं, सलाम कब हो गए, वाह आज तो बड़ा अच्छा है, कुछ स्ट्रगल ही नहीं हुआ। पर तुकाराम महाराज कहते हैं दिवस रात्र अम्मा युद्ध से प्रसंग, जब तक वो संघर्ष आप नहीं होता है आपका तो जब कैसे हुआ ऐसे बोल सकते हैं? जब तक मन के साथ संघर्ष नहीं होता है तब तक वो जब हुआ ही नहीं। तो सब कुछ बाजू में रखे, यू हैव टू सिट डाउन एंड चैंट। तब महाप्रभु के इतने अनंत सागर प्रकार की जो कृपा है उसका कुछ ना कुछ कृतज्ञता हम व्यक्त कर सकते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं कि हम कर रहे हैं, थोड़ा प्रयास कर, ट्राइंग टू रिस्पॉन्ड टू हिज यू नो ट्राइंग टू रेसिप्रोकेट विथ हिज अनलिमिटेड ओशन लाइक मर्सी।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो गौरांग महाप्रभु लीला तो आगाध है लेकिन आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।